समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड डे everybody. Well, listeners, you are tuned to Parikrama on 100.1 FM with Shagun Chopra. And as Karishma was telling us about the program, our program today will be wrapped with festivities. Well, listeners, today it's Dhanteras and Diwali in just 2 days, right? So we have for you first selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and a lot more. And all of this we have for next 30 minutes. And our Dateline is specifically, it's very important and it will be really good to you to listen to. Amazing today. Because, you know, today it marks Dhanteras, Dhantrayodashi. So we have a lot of interesting stuff which we have lined up for you. First, we'll begin with the headlines.
सरकार ने जोर देकर कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से त्योहारों की बिक्री में वृद्धि हो रही है और जीएसटी दर में कटौती का लाभ उपभोक्ता को मिल रहा है।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चर्ड इन लखनऊ।
देश के विभिन्न हिस्सों में आज धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है।
And Indian archer Jyoti Sureka Venam scripts history with World Cup final bronze medal at Nanjing in China. Listeners, it's time for our segment Dateline India, and today we are talking about Dhanteras. Well, the festival of Dhanteras, and along with that, Bachat Utsav.
हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई.
Well, this sets the mood right for our program and for our Dateline India. So the festival of Dhanteras is being celebrated across the country today. Tomorrow it's Choti Diwali and then Diwali. So this marks the beginning of a series of celebrations. I was telling you about it in the beginning as well. The two-day festivity and which also include Narak Chaturdashi, also known as Choti Diwali tomorrow, or Kali Chaudas, the main Diwali, which is Govardhan Puja, and then after that Govardhan Puja, and after that Bhai Dooj. So on this auspicious day, people worship Lord Dhanvantri, Lord Kuber, and Goddess Lakshmi. So this festival observed on 13th day of Krishna Paksh in the month of Ashwin, as per the Hindu calendar.
तो धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं और इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि ज्यादातर श्रोताओं को पता होगा कि धनतेरस का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इस तिथि पर उनकी पूजा आराधना करने से साधक के धन धान्य में कहा जाता है कि वृद्धि होती है। तो ऐसे में हिंदू घर में इस दिन खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है। और शगुन, अब जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स में इतनी भीड़ है, ट्रैफिक है और चारों तरफ जो धनतेरस की रौनक होती है वो नजर आने लगी है।
यस करिश्मा, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम, सो बिकॉज ऑफ द फेस्टिविटीज ओनली, एंड आई मीन इट्स ऑल राइट। धनतेरस, वेल धनतेरस नॉट जस्ट अबाउट करिश्मा बाइंग गोल्ड और सिल्वर और यूटेंसिल्स well, it is a day to celebrate health, wealth and positivity by following auspicious timings, performing the puja with devotion and also observing traditions. Along with that, there is a place, time and a place for traditions. Families, they welcome prosperity, harmony and good fortune. And clean homes, well, we are all at it nowadays, Welcome. Cleaning our homes. Bright lights everywhere, we can see the twinkling lights, sparkling lights. And mindful practices, they make Dhanteras the perfect start to Diwali, setting the stage for a year of happiness, of abundance and of well-being of everybody, of ours as well and for everybody. So now, listeners, let's go to Bhopal, where Dhanteras is being celebrated with great enthusiasm.
धनतेरस का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। महालक्ष्मी मंदिरों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में प्राचीन परंपरा के अनुसार आभूषणों और नोटों से सजावट की गई है। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी आज विशेष पूजा और रुद्रपाठ का आयोजन किया गया है। धनतेरस पर खरीदारी को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस दिन सोना चांदी, बर्तन, वाहन, देवी देवताओं की प्रतिमाएं इत्यादि खरीदना शुभ माना जाता है। आज बाजारों में देखी जा रही है। इस बार लोगों को खरीदारी में राहत इसलिए भी महसूस हो रही है क्योंकि हाल ही में लागू जीएसटी सुधारों से कई वस्तुओं के दाम कम हुए हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एलईडी बल्ब, मोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दो पहिया वाहनों के जीएसटी दरों में काफी कटौती की है। व्यापारियों का कहना है कि टैक्स में कमी से बिक्री बढ़ी है और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हुआ है। छतरपुर जिले की कॉलेज छात्रा ऋषिका ने बताया कि जीएसटी में दरों की कटौती से उन्हें सीधा लाभ मिला है।
मेरा नाम ऋषिका है, मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। मैंने हाल ही में अभी एक स्कूटी खरीदी है जिसमें जीएसटी कम होने से मुझे 10,000 तक की बचत हुई है। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
कुल मिलाकर इस बार का धनतेरस त्योहार केवल आस्था का नहीं बल्कि आर्थिक राहत का भी प्रतीक बन गया है। जहां उपभोक्ताओं को मिल रही सस्ती खरीदारी की खुशी और व्यापार जगत को मिल रहा कर सुधारों का भरोसा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भोपाल से मैं विपिन कुमार मिश्रा।
Now I will also tell you about Assam. Well, the pre-harvest festival Kati Bihu is being observed across the state today. It is one of the three Bihu festivals of the state, and at this occasion it is observed for a better harvest and agrarian prosperity. And we have more details on this. Let's listen to our correspondent.
असम के लोग साल में तीन प्रकार के बिहू त्योहार मनाते हैं और सभी कृषि से जुड़े हुए हैं। असमिया कैलेंडर में काती बिहू काती माह के पहले दिन मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली भी कहा जाता है क्योंकि साल के इस समय में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। यह बिहू शाम को धान के खेतों और घरों में सरसों के तेल के साथ साकी नामक मिट्टी के दीपक जलाकर मनाया जाता है। धानों के खेतों में एक विशेष प्रकार का दीपक होता है जिसे आकाश कहते हैं। इन मिट्टी के दियों को ऊंचे बांस के शीर्ष पर रखा जाता है और किसान अपनी फसलों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये लैंप फसलों के स्वास्थ्य और कीड़ों से मुक्त रखने में मदद करते हैं। प्रकाश धान के खेतों के हानिकारक कीड़ों को आकर्षित करता है और कीड़े जलती हुई आग का शिकार हो जाती है। गुवाहाटी में लोग मिट्टी के दिए और काती बिहू के अनुष्ठान से जुड़े अन्य वस्तुएं खरीदते हुए देखा गया है। अमीनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
और इसके अलावा इस त्योहारी सीजन में भारत को दीपावली का एक शुरुआती तोहफा भी मिला है जो कागजों में नहीं बल्कि नीतियों से लिपटा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में की गई जीएसटी दरों में जो कटौती है उसने देश भर में खरीदारी में तेजी ला दी है। जरूरी और उपभोक्ता की वस्तुओं पर कम करों ने घरों को राहत दी है, बाजारों में जोश भर दिया है और भारत की अब तक की सबसे समृद्ध दीपावली बनने की नींव रखी है।
Karishma, and inflation has cooled to its lowest in 8 years, CPI at just 1.54%, while food inflation, it turned negative, -2.3%, giving families the financial freedom also to celebrate bigger. As GST rates dropped, prices fell and purchasing power rose. What followed was an economic celebration that mirrored the nation's festive spirit. The timing of the GST cuts right before the festival and also the wedding season, this proved perfect and very effective. Consumer sentiment soared and the results, they are visible across every sector.
और श्रोताओं, इतना ही नहीं, त्योहारी और शादी के मौसम में कारोबार 7,00,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है जो वर्षों में भारत का सबसे बड़ा खर्च है।
And Karishma, this is also interesting to note that digital payments, they jumped tenfold overnight from 1.18 lakh crore rupees on 21st September to 11.31 lakh crore rupees on 22 September as shoppers rushed to take advantage of GST savings, digital India's infrastructure, UPI, logistics and GST transparency has enabled a truly national consumption wave spanning metros to mandis.
बिल्कुल और अहमदाबाद जैसे शहरों में 2,500 से कम कीमत वाले कपड़ों पर जीएसटी में कटौती के बाद सूती कपड़ों की मांग भी लगभग 10% बढ़ गई है. सरकार के आर्थिक फैसलों ने न केवल लागत को कम किया है बल्कि त्योहारी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का काम भी किया है. स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा दिया है और भारत में निर्मित उत्पादों को फिर से बाजारों में छा जाने का एक अधिकार भी दिया है.
यस करिश्मा, and now if we focus on automobile industry, well, India's automobile industry has seen its best Navratri performance in a decade. According to Federation of Automobile Dealers Association, the auto industry recorded a 34% year-on-year growth in Navratri sales. This is its highest ever performance. This festive roar of engines is being hailed as a direct outcome of GST reforms and also of consumer optimism. This is the outcome of GST reforms. Well, of course, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the GST 2.0 reforms have given a major boost to country's economy, leading to record sales across key sectors such as electronics, automobiles, as we are focusing on automobiles, and consumer goods during the festival season. She was addressing the joint press conference on GST Bachat Utsav in New Delhi. This happened today, along with Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The finance minister said GST rate cut benefits are reaching to common man.
The prices are reduced, meaning the tax benefit is reaching the end consumer. 54 items, I'm not going to read each one of them out. And even as we say 54 items, you know, from 12 to 5, the rate reduction has happened. And from 28 to 18, rate reduction has happened on largely most of the goods. But in some cases, one or two went this way or that way. But 54 such daily use items, we've been closely monitoring.
Also, it's interesting to note that beneficiaries have expressed happiness that reduction in GST rates have resulted in a wide range of products going cheaper for consumers. Also, Abhranil Chakraborty of Kowai district in Agartala described how GST reforms have helped him.
Good evening. I am Abhranil Chakraborty, a student of class 11 and a resident of Kowai Tripura. I am very grateful and want to acknowledge to the central government for minimizing the GST taxes from various products, especially from medical facilities, which is very beneficial for the poor. And I hope they continue this trend and I want to thank them for this act.
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के राकेश कुमार ने भी केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में की गई कटौती का स्वागत किया. उन्होंने भी रेफ्रिजरेटर खरीदा है जो पहले 20,000 कीमत का था और अब जीएसटी कम होने से उन्हें 15,000 रुपए में पड़ा. उन्होंने भी जीएसटी की दरें कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया.
मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं चंबा जिला का रहने वाला हूं. जो जीएसटी में जो आज कटौती हुई है उससे हमें बहुत फायदा हुआ है. जैसे कि मैंने भी बाजार से एक रेफ्रिजरेटर लेना था जिसका प्राइस पहले 20,000 रुपए था और अब जीएसटी की कटौती होने के कारण वो मुझे अब 15,000 रुपए का मिल रहा हूं. इससे मैं केंद्र सरकार का और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये जीएसटी की दरों में कटौती की है.
तो श्रोताओं, स्थानीय किराना दुकानों से लेकर लग्जरी कार शोरूम तक भारत की अर्थव्यवस्था का हर कोना नए आत्मविश्वास से चमक रहा है. जीएसटी दरों ने उपभोक्ताओं का मनोबल बढ़ाया है. खपत के चरम समय से पहले दरों में कटौती की रणनीतिक रूप से समयबद्धता के साथ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर भारतीय परिवार इस त्यौहार को अधिक बचत, अधिक विकल्पों और भारतीय उत्पादों पर अधिक गर्व के साथ मना सके.
Also, Karishma, this festive season, the message is clear. India's growth story is glowing brighter than the Diwali days as well. From the auto sector to e-commerce, from local artisans to digital entrepreneurs, the nation is celebrating not just festivals, but the strength, along with that, the strength of its economy and the wisdom of timely reform.
शुभ दिन आयो रे।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
करिश्मा, वी आर फर्स्ट हेडिंग टू पुदुचेरी, वेयर पुदुचेरी रिसेंटली विटनेस टू मेजर पब्लिक इवेंट्स दैट शोकेस्ड हाउ दिस एआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक कम्युनिकेशन थ्रू रियल टाइम ट्रांसलेशन, एंड वी हैव मोर डिटेल्स ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
In Puducherry, technology took center stage as Bhashini converted live speeches into Tamil, bridging the language gap instantly. During the foundation stone laying ceremony of the smart and integrated fishing harbour at Karaikal, Prime Minister Narendra Modi's address, delivered in Hindi via video conference, was simultaneously translated into Tamil using Bhashini's Shrutilek speech-to-text tool. The translated text was displayed live on screens, allowing Tamil-speaking citizens to follow the event with ease. A similar initiative was seen at the Agricultural Complex grounds in Puducherry during the foundation stone laying of the 4-kilometer elevated corridor on NH32 and improvement works on the East Coast Road. The Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari's speech, delivered in English, was translated in real time into Tamil using the same technology. Officials and participants at both events appreciated the initiative. Shivaraj Meena, Director of Information Technology, Government of Puducherry, said that the Tamil translation helped bridge the communication gap and made the schemes more understandable to the public. Dr. A. Muthamma, Secretary, Public Works Department, commended the technical team and suggested that such multilingual tools be adopted in all future government programs to enhance accessibility and citizen engagement. With initiatives like Bhashini, India is taking a major step towards bridging communication gaps and ensuring that technology and governance truly speak the language of the people. For Parikrama News, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
Let's head to the Ladakh now, where in a historic milestone for sustainable agriculture, honey from the buckwheat crop has been extracted for the first time ever at the School of Agricultural Science and Technology, Kargil Campus, University of Ladakh. Let's listen into a report.
Earlier in 2019, honey was successfully extracted from the alfalfa crop at the then Mountain Agriculture Research and Extension Station, Kargil, which has since been renamed as the School of Agriculture, Science and Technology, University of Ladakh. Continuing the progress, the institute this year introduced bee colonies in synchronization with the flowering period of alfalfa and buckwheat, successfully extracting honey from both crops. The buckwheat crop was sown 22nd of July and bee colonies were introduced on 24th August from Scotch Kashmir. After about 1.5 months, honey was extracted on 4th October, marking the first ever buckwheat honey extraction in Ladakh. The high altitude, climate and flora diversity of Kargil have given this honey a unique aroma and taste, highlighting the region's immense potential for premium honey production. For Parikrama, this is Anayat Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
Asia's largest open-air annual trade fair, the Bali Jatra, commemorating Odisha's glorious ancient maritime legacy, will start from the first week of next month. So this year, the festival begins on the occasion of Kartik Purnima and will continue till 12th of November 2025. More on this from our correspondent.
It is that time of the year again when the city reverberates to remember and honor the glorious maritime legacy of Odisha, calling of yesteryears. The Yatra, which marks the culmination of all religious festivities held in the month of Kartika, offers a glimpse into the state's rich cultural heritage, which dates back more than 1,000 years. Bali Yatra means journey to Bali. The traders of Odisha undertook voyages along the sea trade route on boats called Boitas from the bank of the Mahanadi River on the full moon day of month of Kartika. Thus, Kartika Purnima is an auspicious day for the people of Odisha, as the sailors used to start their voyage to places like Bali, Java, Borneo, Sumatra in Indonesia and the Ceylon for successful trade on this day. Odia women carry out the ancient ritual of Boita Bandana in the morning by launching a paper boat or a boat made up of banana peels with a clay diya placed inside it. Bali Yatra has changed a lot over time, but the spirit of celebrating this event has remained unchanged. It brings new hopes for small traders of the region who get a platform to showcase their talent. The festival also brings back pleasant memories of Odisha's rich past and cast a magical spell on the minds of onlookers. For Parikrama, with Itishri Singh Rathore, this is Smriti Rekha Taraniya from Akashvani Cuttack.
और श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहाँ की हलचल।
Well, first, let's tell you about star Indian archer Jyoti Sureka Venam. She scripted history by becoming the first Indian woman compound archer to win a medal at the Archery World Cup final, clinching a bronze medal in Nanjing, China. So Jyoti defeated second seed Ella Gibson of Great Britain 150-145 in the match, shooting a perfect 15-10s across five ends. Perfect 15-10s across five ends. Let's tell you about football. Mohun Bagan Super Giant will face off East Bengal FC in the final of the 125th IFA Shield at the Yuva Bharati Krirangan in Kolkata this evening. The match is scheduled to kick off at 6 p.m. IST.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
18th of October is the death anniversary of Ramakrishna Khatri. He was born in Buldhana district of Maharashtra in 1902. During his student life, Khatri was influenced by Bal Gangadhar Tilak. He established the Udasin Mandal, where he was known as Mahant Govind Prakash.
Ramakrishna Khatri joined the Hindustan Republic Association and was given the task to spread the association in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh by Ram Prasad Bismil. After the Kakori robbery, Ramakrishna Khatri was arrested from Pune and was jailed in Lucknow. After the trial, he was sentenced to 10 years of imprisonment for his involvement in the Kakori robbery. When Khatri was released from jail, he immediately started efforts to release other inmates from the jail.
It was because of the efforts of Ramakrishna Khatri that a memorial to freedom fighters could be built at Kakori. Ramakrishna Khatri was also a prolific writer. His book named Shahidon Ki Chhaya was published from Nagpur. He also wrote the book Kakori Shahid Smriti.
Narayan Dutt Tiwari was born on the 18th of October 1925 in the village of Baluti, located in Nainital district of Uttarakhand. His initiation into politics came early, when during the Indian independence movement, he was arrested on the 14th of December 1942 for writing anti-British leaflets opposing imperialist policies and sent to Nainital jail, where his father was already lodged.
Upon his release after 15 months in 1944, he enrolled at the Allahabad University, where he topped the university in MA Political Science. He continued his education with an LLB from the same university and was elected as the president of the Students' Union of the Allahabad University in 1947.
In the first election for the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in 1952, he was elected from Nainital constituency. He became the Minister for Finance and Parliamentary Affairs in the Chaudhary Charan Singh government.
Tiwari was the Chief Minister of Uttar Pradesh three times. In the central government, Tiwari served as the Minister of Industries, Minister of Petroleum, External Affairs Minister, and Minister of Finance and Commerce. He also served as the first Chief Minister of Uttarakhand, which was carved out of Uttar Pradesh from 2002 till 2007.
Narayan Dutt Tiwari also served as Governor of Andhra Pradesh. He passed away on his birthday, that is 18th of October, in the year 2018.
और आज भारतीय रंगमंच के महान निदेशक इब्राहिम अलकाजी की जयंती है। वे भारतीय थिएटर की दुनिया के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने रंगमंच को नई दिशा और नई पहचान दी। इब्राहिम अलकाजी लंबे समय तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक रहे और वहां उन्होंने एक पूरी पीढ़ी के कलाकारों को तैयार किया, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और पंकज कपूर जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं।
And yes, Ibrahim Alkazi, well, he instilled in his acting students an awe and reverence that they still carry with them, with several of them having had the privilege of continuing the practice and also training in the NSD Repertory Company, an introduction made to the National School of Drama by Alkazi only. So, let's listen in to an excerpt from one of his interviews which we found in our Prasar Bharati archive.
Extraordinary thing that my father did was to have a room which turned out to be a library, and he bought the Encyclopedia of Knowledge, which was edited by Arthur Mee, and it was in 20 volumes, and it was an extraordinary encyclopedia. And that was the thing that I and my brothers and sisters dipped into, because that was what initiated me into art and into my understanding and appreciation of Western art.
तो इब्राहिम अलकासी को उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण सहित कई राष्ट्रीय सम्मान मिले थे.
Well, he has staged more than 50 plays in his lifetime. It can be even more. And he used both the mannerisms on stages and the open air venues. And he used to tell about them to his students as well. One of which is
ओम पुरी. आज हिंदी सिनेमा के शानदार अभिनेता ओम पुरी का भी जन्मदिन है. ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा में हुआ था. वे उन चंद कलाकारों में से थे जिन्होंने अपने अभिनय से न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी खास पहचान बनाई. ओम पुरी ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी और फिर धीरे धीरे फिल्मों की ओर उन्होंने रुख किया. तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से एक फेमस डायलॉग.
सोने की छुरी खरीदूंगा अपनी बेटी का कलेजा चीरने के लिए.
नहीं स्वामी जी नहीं, मैंने तो देख लिया है, एक दिल एक जान हो चुके हैं वो दोनों. अब अगर उनको अलग करना है काट कर करना होगा. आप ही कीजिएगा वो काम, आप फेरिएगा छुरी उन दोनों के बीच. मैं तो दुआएं करूंगा अपनी बेटी के लिए भी और आपके बेटे के लिए भी.
Well, listeners, we are telling you about Om Puri. Well, according to all of us, and I think the artists and the theatre artists and all the actors, well, he has been such a great actor, and he has been regarded as one of the finest actors in world cinema, if we talk about that. And even I have picked up something from Prasar Bharati Archive, which I think our listeners would definitely like to know. He's telling us about his journey and how his the theatre happened for him, basically.
मेरा ख्याल है एक कॉन्शियस एफर्ट तो नहीं थी टू बी थिएट्रिकल. हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे आर लिटिल लार्जर देन लाइफ. किंग है तो उस तरह की पोशाक पहने हैं, तो उनकी वॉक भी स्टाइलाइज हो जाएगी और मैनर भी स्टाइलाइज हो जाएंगे, तो विच मे सीम थिएट्रिकल. तो मतलब लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी टू बी थिएट्रिकल. दो इट अपीयर्स, आई एग्री विद यू, इट अपीयर्स थिएट्रिकल. और दूसरे थिएट्रिकल इसलिए भी लगता है कि बहुत लंबे लंबे टेक्स हैं, कट्स का बहुत कम इस्तेमाल है. बिकॉज जाहिर है कि अगर आपको एक महीने में चार एपिसोड खत्म करने हैं 45 मिनट ईच ऑन फिल्म, तो जाहिर है आपको लंबे लंबे टेक ही लेने पड़ेंगे.
Well, he won the Padma Shri in 1990 and other accolades as well. I would also like to tell our listeners that National Film Awards, his accolades consists of National Film Awards for Best Actor and also two Filmfare Awards there as well. Listeners, today we're also remembering a musician. Today it's his birth anniversary, Charles Edward Anderson Berry, or Chuck Berry. Singer, guitarist and songwriter, he pioneered rock and roll and he has been nicknamed as father of rock and roll. Let's listen into one of his creations.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est...
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण को. वे तेलुगु साहित्य के उन महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने अपनी लेखनी के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दी. उनकी रचनाओं में जीवन के गहरे दर्शन, मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक मूल्यों की झलक साफ दिखाई देती थी. उनकी प्रसिद्ध रचना वीर पांड्य कथा को तेलुगु साहित्य का एक अमूल्य रत्न माना जाता है. अपने योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था.
How wonderful is that? Today, listeners, it's also Frida Pinto's birthday. Well, she resolved at a young age to become an actress and she rose to prominence with a film debut in this particular drama, Slumdog Millionaire.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत.
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. नमस्कार.